बड़ी हवेली में सुबह की रौनक अभी भी बरकरार थी। ऊंची ऊंची छतें, चमचमाता संगमरमर और हर कोने में सजी शान। लेकिन उस शान के बीच रत्ना देवी आज कुछ खोई सी लग रही थीं। वो हॉल के कोने में रखे पुराने लैंडलाइन फोन के पास बैठी थीं। उंगलियां बार बार नंबर घुमा रही थीं, जैसे किसी खास इंतजार में हों। कुछ सेकंड की घंटी के बाद उधर से आवाज आई, हेलो। रत्ना देवी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। शकुंतला, मैं बोल रही हूँ। उनकी आवाज में अपनापन था, लेकिन साथ में एक हल्की सी कमी भी। अरे माँ, कैसी हैं आप? शकुंतला की आवाज में चिंता साफ थी। रत्ना देवी ने गहरी सांस ली। ठीक हूँ बेटा, बस आज ना जाने क्यों तेरी मौसी सुषमा की बहुत याद आ रही है। ये कहते हुए उनकी नज़र कहीं दूर चली गई, जैसे पुराने दिनों की तरफ। यहाँ हवेली में सब अपने अपने काम में लगे हैं, लेकिन मन है कि खाली खाली लग रहा है। उनकी आवाज़ थोड़ी धीमी हो गई। सोच रही थी, अगर तू मेरे साथ चलती तो हम दोनों जाकर दीदी से मिलाते। उधर कुछ पल की खामोशी रही, फिर शकुंतला ने तुरंत कहा, आप चिंता मत करो माँ, मैं अभी आपके दामाद से बात करती हूँ, वो हमें लेकर चलेंगे, आज ही चलते हैं। रत्ना देवी के चेहरे पर सुकून उतर आया। सच? हाँ माँ, आप तैयार रहिए, हम थोड़ी देर में निकलते हैं। फोन कट गया, लेकिन रत्ना देवी के चेहरे पर अब एक अलग ही चमक थी। उन्होंने धीरे से खुद से कहा, बहुत दिन हो गए दीदी को देखे, पता नहीं कैसी होगी वो। उनकी आंखों में एक हल्की सी बेचैनी भी थी, जैसे दिल पहले ही कुछ महसूस कर चुका हो। इधर सुषमा देवी की हवेली, दोपहर की खामोशी अब फिर से फैलने लगी थी। हॉल में वही पुराना लैंडलाइन फोन रखा था, जिसकी घंटी बहुत कम बजती थी, लेकिन आज अचानक ट्रिंग ट्रिंग, उसकी तेज आवाज पूरे हॉल में गूंज थी। नंदिनी, जो पास ही खड़ी थी, चौंक कर फोन की तरफ बढ़ी। उसने जल्दी से रिसीवर उठाया। हेलो, उधर से शकुंतला की आवाज आई। नमस्ते, मैं शकुंतला बोल रही हूँ। माँ का मन है कि वो सुषमा मौसी से मिलने आए, हम लोग आज ही आ रहे हैं। नंदिनी के चेहरे का रंग एकदम बदल गया, उसकी उंगलियां रिसीवर पर कस गईं। अच्छा, उसने किसी तरह खुद को संभालते हुए कहा, जी आइए। फोन कट गया। कुछ सेकंड तक नंदिनी वहीं खड़ी रही, जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। उसकी सांसें थोड़ी तेज हो गईं, आंखों में घबराहट साफ दिखने लगी। ये अभी क्यों आ रहे हैं, उसने खुद से बुदबुदाया। फिर बिना समय गवाए वो तेजी से मुड़ी और सीधे अंदर की तरफ बढ़ गई। कुछ ही देर में अविनाश, सुप्रिया और सुजीत तीनों एक कमरे में इकट्ठा थे। नंदिनी ने दरवाजा बंद किया और घबराई हुई आवाज में कहा, अभी फोन आया था शकुंतला का। तीनों ने एक साथ उसकी तरफ देखा। क्या कहा उसने, अविनाश ने गंभीर होकर पूछा। नंदिनी ने गहरी सांस ली। वो लोग यहाँ आ रहे हैं, रत्ना माँ का मन है सुषमा मौसी से मिलने का। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया, जैसे किसी ने अचानक सब कुछ रोक दिया हो। सुप्रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या अभी? सुजीत ने माथे पर हाथ रख लिया। ये तो गड़बड़ हो गई, उसकी आवाज में साफ टेंशन थी। अविनाश इधर उधर टहलने लगा। अगर उन्हें यहाँ की हालत का पता चल गया तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा, सुप्रिया ने घबरा कर कहा। और अगर माँ ने कुछ बता दिया तो? आप जानते हैं ना, वो बच्चों के सामने भी सब बोल देती हैं, नंदिनी ने जल्दी से कहा। हमें कुछ करना पड़ेगा, उन्हें कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। सुजीत अचानक रुक गया, उसकी आंखों में एक चालाकी चमकी। पहले तो माँ को संभालना होगा, उन्हें समझाना होगा कि वो कुछ भी उल्टा सीधा ना बोले। अविनाश ने सिर हिलाया। और घर का माहौल भी ठीक करना होगा, ऐसा लगे कि सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है, सुप्रिया ने तुरंत कहा। हाँ, नौकरों को भी बोल देते हैं, कोई भी बाहर की बात उनके सामने ना करे, नंदिनी ने चिंता में कहा। लेकिन बच्चे धानी और वरुण तो कुछ भी बोल सकते हैं। कमरे में फिर से खामोशी छा गई। तीनों के चेहरों पर एक ही सवाल था, उन्हें कैसे रोका जाए। सुजीत ने धीरे से कहा, उन्हें उनके कमरों में ही रखेंगे, कह देंगे मेहमानों के सामने ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। अविनाश ने जोड़ दिया, और अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें कहीं बाहर भेज देंगे। सुप्रिया ने गहरी सांस ली। ये सब इतना आसान नहीं होगा, नंदिनी ने खिड़की की तरफ देखा। बाहर धूप धीरे धीरे ढल रही थी। समय बहुत कम है, उसने धीमे स्वर में कहा, वो लोग कभी भी पहुंच सकते हैं। कमरे का माहौल अब और भारी हो गया था। चारों को साफ समझ आ गया था कि ये मुलाकात सिर्फ एक साधारण मुलाकात नहीं होने वाली, ये सच और झूठ के बीच की टक्कर बनने वाली थी। उधर सुषमा देवी अपने कमरे में थीं, उन्हें अभी तक कुछ पता नहीं था। वो आईने के सामने खड़ी थीं और धानी लाई हुई साड़ी पहन रही थीं। साड़ी उनके कंधों पर ऐसे सजी जैसे सालों बाद उनकी पहचान वापस लौटी हो। उन्होंने खुद को आईने में देखा और हल्के से मुस्कुरा दी। सच में अच्छी लग रही है, उन्होंने धीरे से कहा। लेकिन उसी वक्त उनके दिल में एक अजीब सी हलचल हुई, जैसे कुछ होने वाला हो। उन्होंने खिड़की की तरफ देखा, हवा का झोंका अंदर आया और पर्दे हल्के से हिल गए। आज कुछ अलग है, उन्होंने खुद से कहा। उन्हें नहीं पता था कि कुछ ही देर में उनके सामने कोई आने वाला है और उस मुलाकात के साथ बहुत सारे छुपे हुए सच भी बाहर आने वाले हैं। इधर नंदिनी, सुप्रिया, अविनाश और सुजीत चारों एक दूसरे को देख रहे थे। घबराहट, डर और चालाकी तीनों उनके चेहरों पर साफ दिख रहे थे। सुजीत ने आखिर में धीमे लेकिन ठंडे स्वर में कहा, ये तो मुसीबत है, मौसी जी को अगर कुछ पता चल गया तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। सीन यहीं ठहर गया, लेकिन हवा में साफ महसूस हो रहा था कि तूफान बस आने ही वाला है।